नमस्कार भारत, 2 दिसंबर दिन शनिवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने माना, चुनाव में रूसी दखल पर एफबीआई से बोला था झूठ।
I strongly urge the president not to do anything that would interfere.
दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने जिंदा बच्चे को मुर्दा बताकर परिवार को सौंपा, मामला दर्ज। और विवेचना में आज होगी बात समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की।
जब पूरा जिंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया, गरीबों के लिए काम किया, तो मुझे पैसा लेके देश को बेचने वाले व्यक्ति जैसे अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए तो सबसे ज्यादा दुख मुझे आज भी वही लगता है।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने एफबीआई के सामने झूठ बोलने के आरोप स्वीकार कर लिए हैं। फ्लिन ने मान लिया है कि उन्होंने रूस के राजदूत के साथ हुई मुलाकात के बारे में एफबीआई को गुमराह किया था। अमरीकी मीडिया का कहना है कि फ्लिन अपनी गवाही में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने उन्हें रूस के राजदूत से मिलने के लिए निर्देशित किया था। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल की जांच की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। यरूशलम की स्थिति बेहद विवादास्पद है। इजरायली और फलस्तीनी इस पर अपनी राजधानी होने का दावा ठोकते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पूर्वी यरूशलम पर इसराइल के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में अमेरिका के दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम लाने का वादा किया था। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देकर ट्रंप अपने वादों पर खरे उतरने का संदेश देना चाहते हैं। होंडुरास में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनावों को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दंगारोधी पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। विपक्ष के उम्मीदवार साल्वाडार नसरल्ला के समर्थकों ने मुख्य मार्गों पर जाम लगा दिया है और वाहनों को आग भी लगाई है। प्रदर्शनकारी चुनावों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। नसरल्ला का आरोप है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति हुआन ओरलांडो हर्नांदेज को फायदा पहुंचाने के लिए मतगणना सिस्टम से छेड़छाड़ की है। कुछ मतों की गिनती दोबारा की जा रही है। उम्मीद है कि अंतिम नतीजों की घोषणा अगले कुछ घंटों में कर दी जाएगी। पुलिस बलों ने शांति की अपील की है। पुलिस के प्रवक्ता जॉर्जे सेराटो ने कहा, होंडुरास की सेना और राष्ट्रीय पुलिस कानून के दायरे में काम कर रही हैं और हम सभी लोगों से शांति बनाए रखने, धैर्य रखने और विवेकपूर्ण रहने की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीरिया युद्ध को लेकर जिनेवा में चल रही शांति वार्ता पर सरकार के प्रतिनिधिमंडल के रवैये से संकट पैदा हो गया है। सरकारी प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता बशर अल जाफरी ने विद्रोहियों पर रुकावटें पैदा करने के आरोप लगाए हैं। जाफरी ने कहा है कि विपक्ष की राष्ट्रपति बशर अल असद के पद छोड़ने की मांग ने शांति वार्ता पर संकट पैदा कर दिया है। बशर अल जाफरी ने कहा,
irresponsible politically speaking.
उनकी भाषा उत्तेजक है, राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदाराना है और इस शांति वार्ता से सीरिया के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनके खिलाफ है, वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के अभियोजकों ने सोने के उस व्यापारी की संपत्तियां सीज करने के आदेश दिए हैं जिसने राष्ट्रपति रिचेप तैयिप एर्दोआन पर ईरान पर अमरीकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सोने के बदले तेल की स्कीम में शामिल होने के आरोप लगाए थे। रेजा जर्राब ने न्यूयॉर्क की अदालत में आरोप स्वीकार कर लिए हैं और वो एक तुर्क बैंकर के खिलाफ गवाह बन गए हैं। आरोप है कि इस स्कीम के जरिए ईरान ने 2010 से 2015 के बीच प्रतिबंध काल में डॉलर हासिल किए। राष्ट्रपति एर्दोआन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। नाइजीरिया की पुलिस का कहना है कि उत्तर पूर्वी प्रांत एडमावा में हुए हमले में उसके 4 अधिकारी मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने स्वीकार किया है कि उन्होंने FBI के सामने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कुछ हफ्ते पहले रूसी राजदूत से मुलाकात के बारे में झूठ बोला था। यह मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने से पहले हुई थी। मुलाकात की जानकारी सामने आने के बाद फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने FBI के सामने झूठ बोलने के आरोप स्वीकार कर लिए हैं। आरोप है कि माइकल फ्लिन ने रूसी राजदूत के साथ अपनी मुलाकात के बारे में FBI को गुमराह किया था। मुलाकात की जानकारी सामने आने के बाद फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अमेरिका में बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल की जांच रॉबर्ट म्यूलर समिति कर रही है। इस जांच के दौरान फ्लिन से पूछताछ की गई है। फ्लिन के आरोप स्वीकार कर लेने के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ऐसा करके उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही फंसा लिया है। वहीं हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर एलेक्स व्हाइटिंग का कहना है कि ऐसा नहीं है। व्हाइटिंग कहते हैं, फ्लिन ने स्वीकार किया है कि ट्रंप अभियान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने रूसी राजदूत किस लयाक से मिलने के लिए निर्देशित कर रहे थे। अब तक इसे फ्लिन का कोई कपटी अभियान माना जा रहा था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि उसे ट्रंप से जुड़ा व्यक्ति निर्देशित कर रहा था। अदालत में सुनवाई के दौरान फ्लिन ने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि वो म्यूलर जांच में अहम जानकारियां दे सकते हैं। सीनेट इंटेलिजेंस समिति के सदस्य और शीर्ष डेमोक्रेट नेता मार्क वार्नर ने पत्रकारों से कहा है कि समिति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर से दोबारा पूछताछ कर सकती है। उन्होंने कहा, हम अपना काम कर रहे हैं, हम उन सभी गवाहों को बुला रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है। इनमें कुशनर और अन्य गवाह शामिल हैं। हम उन्हें वापस सुनवाई के लिए बुलाएंगे। ये जांच द्विपक्षीय तरीके से चलती रहेगी और हम अपना काम पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि अभियोजकों के सामने दिए गए बयान में फ्लिन ने ट्रंप प्रशासन के एक और शीर्ष व्यक्ति का नाम लिया है। इससे म्यूलर की जांच आगे किस दिशा में जाएगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अमरीकी मीडिया ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि फ्लिन ने ट्रंप के दामाद कुशनर का नाम लिया है। माइकल फ्लिन ट्रंप प्रशासन के पहले व्यक्ति हैं जिन पर चुनावों में रूसी दखल के मामले में आरोप तय हो गए हैं। हालांकि अदालत में आरोप स्वीकार करने के बाद अब उन पर आगे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उनकी गवाही को स्वीकार कर लिया गया है। फ्लिन के कबूलनामे का असर ट्रंप प्रशासन पर जरूर होगा। ये असर कितना रहेगा, ये म्यूलर समिति की आगे की जांच में पता चल जाएगा।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। वर्षा को दो जुड़वा बच्चे हुए। अस्पताल ने दोनों बच्चों को मृत बताकर परिजनों को सौंप दिया, जबकि इनमें से एक बच्चा जिंदा था। ये चौंकाने वाली घटना है दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चला कि एक बच्चे की सांसें चल रही हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल की जरा सी लापरवाही के कारण एक जीवित बच्चे की मौत हो सकती थी। हमारी सहयोगी मानसी दास के साथ बातचीत में बच्चे के नाना प्रवीण ने अस्पताल पर संगीन आरोप लगाए।
तो मैडम डिलीवरी है ना 30 तारीख को सवेरे 7:30 AM, तो पहली डिलीवरी हुई एक बॉय की, और मैडम फिर दूसरी डिलीवरी हुई 7:42 पे, वो दूसरा जो डिलीवरी वो थी लड़की। इन्होंने हमको 8 बजे करीब अंदर बुलाया कमरे में। इन्होंने कहा, जी देखो आपकी जो बेबी फीमेल थी वो तो डेड है, और जो आपका बॉय फीमेल है, जो आपका बॉय बेबी है उसकी धड़कन चल रही है, उसकी सांस चल रही है, तो आप इसको वेंटिलेटर पे रखवा दो, नर्सरी में रहेगा। जो नर्सरी वाला डॉक्टर था उन्होंने बोला कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा और 3 महीने तक रखने पड़ेंगे। वो मैडम हमने उनको बोला कि आप एक काम करिए, इन बच्चों को ना आप हमें दे दीजिए, हम कोई दूसरा हॉस्पिटल अपने खर्चे के हिसाब से देख के वहीं एडमिट करेंगे। तो इन्होंने बोला, क्या कहते, भाई ठीक है आप वेट कीजिए, हम कुछ देखते हैं। तो इनका फिर कॉल आया हमारे पास, कोई 1 बजे करीब, तो इन्होंने हमको ऊपर बुलाया, तो मैं, बच्चे का नाना और बच्चे का दादा, हम दोनों ऊपर गए, तो इन्होंने बोला कि आपका दूसरा बेबी भी खत्म हो गया। तो उसके बाद इन्होंने मेरे से आईडी प्रूफ लिया और हमारे साइन करवाए, और दोनों बेबी के उनको पार्सल टाइप अलग अलग पैक किए हुए, और उनके ऊपर लिखा हुआ था ये बेबी वन बेबी टू, मतलब मेल फीमेल लिखा हुआ। उन्होंने एक एक पीली पॉलीथीन में डाल के मैडम वे हमें दे दिए, तो हम नीचे लेके आए, तो हम इनको लेके शमशान घाट के लिए जा ही रहे थे, तो रास्ते में इत्तेफाक से जो पैकेट मेरे पास था, पार्सल मेरे पास था बच्चे का, उसमें कुछ मुझे एक्टिविटीज ही नजर आई, मधुबन चौक के पास कोई 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में हो गए, कुछ एक्टिविटी नजर आई मुझे, तो मैंने गाड़ी साइड में रुकवाई, रोक के हमने पैकेट खोला। पहली बात तो उसकी हम पैकिंग देख के हैरान हो गए, कपड़ा फिर पॉलीथीन फिर कपड़ा फिर पॉलीथीन फिर कपड़ा। तो मैडम फिर हमने अंदर देख के, मैडम जैसे हमने वो पैकेट खोला ना मैडम, देख के हम हैरान हो गए, हम हैरान ये हो गए कि मैडम बच्चा ना सांसें ले रहा था। तो मैडम हमने फौरन, तो मैडम हमने एक दो गाड़ी तो मैडम बच्चों को लेके मैडम वहाँ हॉस्पिटल भेज दी, और लड़की को लेके मैडम हम शमशान घाट चले गए दफनाने के लिए। और मैडम बच्चा अभी भी ठीक है मैडम, हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल ओके है।
मानसी दास ने शालीमार बाग थाने के पुलिस अधिकारी ऋषिपाल सिंह से भी इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 308 यानी ग्रीवियस इंजरी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस संबंध में अस्पताल की लापरवाही की जांच करेगी और दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भी इस बारे में सूचित करेगी। इस संबंध में बीबीसी ने अस्पताल प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। हालांकि एक समाचार चैनल को बयान देते हुए अस्पताल ने कहा है कि 22 हफ्ते के प्री मैच्योर बच्चे को जब उनके रिश्तेदारों को सौंपा गया था तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। हम इस घटना से सकते में हैं और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल का कहना है कि मामले से संबंधित डॉक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। हम बच्चे के परिवार के साथ संपर्क में हैं और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार 72 घंटों के भीतर इस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट देगी और 1 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी।
बीबीसी इंडिया बोल।
कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। क्या ये कहना कांग्रेस की मजबूरी है या चुनावी रणनीति? अगर चुनावी रणनीति है तो क्या ये गुजरात में कारगर साबित होगी? इस बार इंडिया बोल में हिंदुत्व की राजनीति को लेकर कांग्रेस की दुविधा पर ही होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 2 दिसंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और कार्यक्रम में अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा मेरे साथ यहाँ प्रमुख अखबारों के साथ मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या कुछ है आज के अखबारों में?
जी, अखबारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की उंगलियां उठाते हुए दिख रहे हैं, और कल निकाय चुनाव जो यूपी में हुए थे उनके नतीजे आए, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। दैनिक जागरण लिखता है उत्तर प्रदेश में फिर लहराया केसरिया, पंजाब केसरी योगी की बम्पर लहर, और दैनिक भास्कर बता रहा है कि शहरों में 46% तो गाँव में 15% सीटें जो हैं भाजपा ने जीती है। इसके अलावा अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान अखबारों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि भारत की मुस्लिम आबादी का ख्याल रखें। ये ओबामा जो हैं हिंदुस्तान टाइम्स की समिट में आए थे और उनके बयान को हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा है और लिखा है येस वी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम टुगेदर, हम दुनिया की कोई भी समस्या साथ मिलकर सुलझा सकते हैं। इसके अलावा 3 तलाक को लेकर जो केंद्र सरकार का कानून प्रस्तावित है उससे जुड़ी खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। रिपोर्टें बता रही हैं कि 3 तलाक यानी तलाक 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 कहना नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध होगा और इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अभी यह कानून नहीं बना है। राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने जो है राय मांगी है और उसी से जुड़ी ये खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। एक खबर और ध्यान खींच रही है, सम्मान के इंतजार में घंटों पड़ा रहा नेताजी के अंगरक्षक का शव। सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके अंगरक्षक रहे बुधराम का जन्म हरियाणा में हुआ था और मौत उनकी राजस्थान में हुई है, इसी वजह से कोई विवाद हुआ और उनके शव के पास जो है अधिकारी नहीं पहुंचे, बात उनके शव को राजकीय सम्मान देने की थी। जिस खबर का आपने जिक्र किया, दिल्ली के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक जिंदा बच्चे को मृत बता दिया गया, ये खबर भी आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर अलग अलग रूप में है। और दक्षिण भारत में तूफान ने दस्तक दी है, तो दक्षिण भारत से एक तस्वीर आज द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है, जहां त्रिवनंतपुरम के समुद्री तट पर छाता लिए महिलाएं खड़ी हैं और उसके पीछे जो मौसम है वो दिख रहा है। ये कुलदीप आज के अखबार।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। और अब वक्त है हमारी साप्ताहिक विवेचना का। जया जेटली के साथ कई विशेषण जोड़े जा सकते हैं, पारंपरिक कला और शिल्प की विशेषज्ञ, लेखिका और एनडीए एक के प्रमुख घटक दल समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और तेज तर्रार नेता जॉर्ज फर्नांडीज की निकट सहयोगी। हाल ही में जया जेटली की आत्मकथा प्रकाशित हुई है, लाइफ अमंग द स्कॉर्पियंस, मेमोयर्स ऑफ अ वूमन इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने अपने घटनापूर्ण जीवन पर बहुत बेबाकी से नज़र दौड़ाई है। तो आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं जया जेटली की इस बहुचर्चित पुस्तक पर।
वैसे तो भारत की राजनीति में महिलाओं का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका राजनीति में अपने अनुभवों को बेबाकी से कागज पर उकेरना जरूर दुर्लभ बात है। जया जेटली की किताब का शीर्षक पढ़कर पहले पहल ये आभास मिलता है कि राजनीति में उनके अनुभव बहुत सुखद नहीं रहे हैं, और शायद इसीलिए वो राजनीति के अपने राहगीरों को बिच्छू की संज्ञा देती हैं। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछा कि आपने अपनी आत्मकथा का नाम लाइफ अमंग स्कॉर्पियंस क्यों रखा?
जी, एक तो स्कॉर्पियंस बिच्छू जो होते हैं उनका डीएनए में है कि वो टंक मारे, काटे। इस किताब का नाम इसलिए रखा कि मैंने एक किस्सा अखबार में देखा था जिसमें एक महिला मलेशिया में एक शीशे के पिंजरे में अपने आप को एक महीने के लिए बंद कर दिया 2000 बिच्छुओं के बीच, और पता नहीं क्यों किया, और सारे दुनिया उनको देखते रहे। 7 बिच्छुओं ने उनको काटा भी और उनको थोड़ा सा इलाज भी करना पड़ा, और आखिर में वो बाहर निकल आई और म्यूज़ियम का डायरेक्टर ने उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया। मुझे वो पढ़ के ऐसे लगा कि एक महिला का सार्वजनिक जीवन ऐसे ही होता है, शीशे के पिंजरे के अंदर सारा दुनिया आपको देख रहे हैं और जहां मौका मिले आपको किसी तरह मारे, तकलीफ दें।
1942 में शिमला में जन्मी जया जेटली ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मशहूर मिरांडा हाउस और अमेरिका के स्मिथ कॉलेज में की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक लंदन के एयर इंडिया के दफ्तर में काम भी किया। उन दिनों वहां कमलेश शर्मा, उनके भावी पति अशोक जेटली, मणिशंकर अय्यर और राजीव गांधी भी पढ़ रहे थे।
कैम्ब्रिज में वो लोग पढ़ते थे, मैं लंदन में काम करती थी। मेरा तो बिल्कुल फालतू काम था, एक फाइलिंग क्लर्क का काम था एयर इंडिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था कि इंडिया वापस आने के लिए एक टिकट, और मुझे थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी कि मैं एक साल अकेले रहूं या अपने कोई सहेली के साथ रहूं। भारत आके उन दिनों में आप अलग नहीं रह सकते थे, फिर फैमिली के साथ, फिर ये सब एक आज़ादी नहीं मिलती आपको। तो वीकेंड्स पे मैं कैम्ब्रिज जाती थी जहां ये सारी टोली, राजीव गांधी भी, तो राजीव गांधी सोनिया गांधी के थोड़ा बहुत दोस्ती बढ़ाने के परस्यूट में थे, हम लोग ये सब देखते थे। साथ में एक ही रेस्टोरेंट में जाना, कभी कोई पार्टी में वहाँ साथ में रहना, हम लोग हलो हलो बोलते थे। और बाद में जब मेरे हस्बैंड IAS में आ गए और JNK आ गए, तो राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस का पायलट था। कभी कभी हम लोग एयरपोर्ट जाते थे किसी को लेने, तो राजीव गांधी पायलट होते हुए उधर उतर के एयरपोर्ट का कॉफ़ी शॉप में अकेले बैठते थे। तो कभी कभी हम भी कहते थे बेचारा प्रधानमंत्री का बेटा है लेकिन अकेला बैठा है, तो इनके साथ चलो बैठो, कॉफ़ी पियो, ऐसे भी होता था।
लंदन से दिल्ली वापस आने पर जया जेटली ने पहले गुजरात एम्पोरियम गुर्जरी में काम करना शुरू किया, और फिर दिल्ली की मशहूर दिल्ली हाट को अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
दिल्ली हाट इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक तो मैं देखती थी कि साधारण कारीगर, कुंभार लोग, पंखा बनाने वाले लोग, टोकरी बनाने वाले लोग हमेशा सड़क पे बैठ के अपना काम भी करना, रहना और वहां से अपना माल बेचना। तो एक दिन सड़क में एक कुंभार था जिसका घर टूटा पड़ा था और वो बैठ के रो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने आके कहा है कि ये राजीव गांधी का घर वो छतरपुर का मकान में जाने का रास्ता बन गया है, सिक्योरिटी हैजर्ड हो गया कुंभार को वहाँ किनारे में बैठना। तब मैं कोर्ट गई इनके लिए कि इनको अधिकार होना चाहिए अपना रोजगार कमाने के लिए, और ऐसे नहीं हटाना, कुछ तो उनके लिए जगह बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनसिपैलिटी से बोला कि एक जगह बनाओ, उस एक बात को मैंने पकड़ लिया। वीपी सिंह तब प्रधानमंत्री थे और मैं उनसे मिलकर मैंने कहा कि ये एक मेरी योजना है कि ऐसे एक मार्केट बनाया जाए जहाँ लोग आते रहे जाते रहे और कारीगर के लिए हो। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा हाँ डू इट इमीडिएटली। करते करते 6 साल लगा ये सब करने में और फिर खड़ा हो गया।
1977 में उनकी मुलाकात पहली बार समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से हुई थी। उस समय वो जनता पार्टी सरकार में उद्योग मंत्री थे और जया के पति अशोक जेटली उनके स्पेशल असिस्टेंट हुआ करते थे। उस जमाने में फर्नांडिस इसलिए भी चर्चा में थे कि उन्होंने संसद में मुरारजी देसाई सरकार का जोरदार बचाव करने के 72 घंटों के भीतर उस सरकार के खिलाफ मतदान किया था। उस समय जॉर्ज ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
12 जुलाई को मैंने सरकार का बचाव किया था। वो सरकार जितने मुरारजी भाई की थी इतनी हमारी भी थी, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि 42 लोगों के मंत्रिपरिषद में सिर्फ एक ही मंत्री निकला जो 3 दिन लगातार हमारे सरकार पर हल्ला होते हुए उसका बचाव के लिए खड़ा हो गया। 3 दिनों में और कोई 41 मंत्री में से कोई खड़ा नहीं हो गया था, नंबर एक। नंबर दो, जब मैंने मेरे सरकार का बचाव किया तब मेरी सरकार अभी भी संसद में बहुमत में थी। मेरे सरकार का बहुमत 12-13-14 को टूट गया। जब बहुमत टूट गया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमने मुरारजी भाई से कहा, मुरारजी भाई बहुमत खत्म हुआ है, 100 वोट से हम लोग हार रहे हैं कल, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, नया नेता चुनना चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी लोगों ने इसका समर्थन किया सिवा मुरारजी भाई। मुरारजी भाई का जवाब रहा, अगर मैं अकेला भी रहूं तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसे स्थिति में जब दल हमारा अल्पमत में गया और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार किया नेतृत्व से और अपने पद से, तब मैंने उचित समझा कि मैं उससे हट जाऊं।
जया जेटली ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि वो जॉर्ज की पार्टी समता पार्टी के अध्यक्ष पद तक जा पहुंची। मैंने जया जेटली से पूछा कि जॉर्ज आपके सिर्फ दोस्त थे या इससे भी कुछ बढ़कर?
कई किस्म के दोस्त होते हैं और एक लेवल ऑफ दोस्ती होती है। इसमें एक इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट जो एक महिला को बहुत ज़रूरत होती है इसका, और कोई अगर महिला काबिल भी है, सोच भी सकती है, राजनीतिक सोच भी उनके अंदर है, ये सब मुझे और कहीं से नहीं मिला। जॉर्ज साहब हमेशा कहते थे, एक तो मुझे ये अच्छा लगा, दूसरा उनमें एक बहुत ज़्यादा मानवता का एक सोच हुआ करता था। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि वो जेल में थे तो पंखा के ऊपर से एक चिड़िया का घोंसला में से 2-3 छोटे बच्चे गिर गए। वो उस समय उड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने, उनका कोई ऊनी टोपी था, ऊनी टोपी का एक घोंसला बना के उन्होंने उन चिड़ियों को पाला। ऐसे सब चीज़ थे जो एक ह्यूमैनिटी की तरह से हम लोगों को जोड़ा गया।
जॉर्ज फर्नांडिस एक विद्रोही राजनीतिज्ञ थे जिनका परंपराओं में यकीन नहीं था। हैरी पॉटर की किताबों से लेकर महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल की जीवनी तक उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी एक जबरदस्त लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसकी कोई भी किताब ऐसी नहीं थी जो उन्होंने न पढ़ी हो। 70 साल की आयु तक जॉर्ज अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोया करते थे।
जिंदगी में उन्होंने कभी न कंघी खरीदा न इस्तेमाल किया, और कपड़ा वो एक सेल्फ डिसिप्लिन के लिए खुद धोते थे। इस्त्री तो ज़रूर करवाते थे लेकिन उनको ये कलफ डाल के, ये सफ़ेद सफ़ेद कड़क नेता है ना, वो ऐसा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लालू यादव ने एक बार भाषण में कहा कि जॉर्ज साहब बिल्कुल बोगस है, वो कपड़ा धोबी से धुलवा के फिर धोबी से जब वापस आता था वो उसको निचोड़ निचोड़ के मिट्टी में थोड़ा सा मिला के तब पहनता था। तो उस पर कोई टीवी वाले आए और बोले कि लालू जी ने ऐसे कहा, तो जॉर्ज साहब का हम एक रूबरू प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें वो अगर तैयार हो जाए तो उनका कपड़ा धोते हुए हम एक फिल्म कर सकते हैं। तो जॉर्ज साहब ने मंजूर कर दिया, उनको मज़ा आया। तो कपड़ा धोते हुए लुंगी पहन के बाथरूम में जमीन पे बैठ के कपड़ा धोने वाला एक सीन शायद राजीव शुक्ला का जो टीवी एजेंसी, उन्होंने एक बार किया था।
जया जेटली के करियर को उस समय बड़ा झटका लगा जब तहलका पत्रिका ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर उन पर कुछ रक्षा सौदों के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मैंने जया जेटली से पूछा कि वास्तव में हुआ क्या था।
ये लोग आए जो कभी मुझसे मिले ही नहीं थे और आके बात करने लग गए ऐसे ही फालतू में। ये लोग आए और फिर सडनली बीच में बोलते हैं कि ये मैडम को ये दे दूं, तो क्या दूं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। लेकिन पहले बोला था कि पार्टी के लिए कुछ ये देना चाहते हैं। अब पार्टी को डोनेशन देना कोई गैरकानूनी बात नहीं है। और जब मैंने कहा कि आप ये भेज दो मैसूर जहाँ हमारे मिनिस्टर एक सम्मेलन कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा 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 बोल दिया। फिर बातों में कहने लग गए कि हमारे की परेशानी है डिफेंस मिनिस्ट्री, और मैं तब तुरंत कहने लग गई कि मुझे नहीं पता डिफेंस मिनिस्ट्री का रवैया, मुझे नहीं मालूम वो लोग क्या करते नहीं मालूम। बार बार मुझे बोलते रहे कि नहीं हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ जवाब नहीं आ रहा, जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और जैसे कि वो भी कुछ भ्रष्टाचार में लगे हैं मिनिस्टर वो ऑफिसर्स जो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सबको बराबरी का नज़र से देखें, नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो पहले आप फॉलो अप करके देख लेना। अच्छा अच्छा ठीक है बस इतना ही चाहिए बोल के चले गए। और बाद में देखना कि मैंने पैसा लिया और मैं डिफेंस मिनिस्टर के घर में बैठ के हैबिटुअली पैसा लेती हूँ, ये सब कहानी बाहर आ गई।
सच्चाई जो भी हो, जया जेटली को इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। न सिर्फ ये बल्कि जॉर्ज फर्नांडिस को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक दिन ऐसा भी आया कि जया जेटली को जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी लैला कबीर ने जॉर्ज की जिंदगी से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करवा दिया। जॉर्ज इस समय अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी याददाश्त और पहचानने की शक्ति जाती रही है। 2014 में काफी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जया जेटली को हर 15 दिन पर सिर्फ 15 मिनटों के लिए जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने की अनुमति मिली है। जया जेटली अब भी हर 15 दिन बाद ठीक 11:05 पर सिर्फ 15 मिनटों के लिए जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने जाती हैं। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना का ये अंक कैसा लगा आपको, हमें लिखिएगा जरूर। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल दिल्ली के अस्पताल में जिंदा बच्चे को मुर्दा बताकर परिवार को सौंपे जाने की घटना पर एक प्रतिक्रिया फेसबुक पर हमें लाइव सुन रहे अशोक कुमार यादव ने दी है। अशोक लिखते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें संपन्न लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। क्रिकेट के मैदान से ये खबर, आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भारत बनाम श्रीलंका का तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है। शिखर धवन इस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। शिखर धवन को दूसरे टेस्ट मुकाबले में आराम दिया गया था। दिल्ली में होने वाले टेस्ट मुकाबले पर बात कर रहे हैं खेल पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली।
दिल्ली की पिच अगर आप मेरे से पूछें बाउंस कम होता है, ट्रेडिशनली अगर आप देखें स्लो रहता है पिच। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्यूरेटर के ऊपर प्रेशर ये रहेगा कि अगर ऐसा विकेट बनाए बाउंसी तो थोड़ा लगे कि जैसे साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के लिए तैयार हो रहे हैं। ये टेस्ट मैच के बाद आप T20 और वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी और श्रीलंका के साथ, और इसके दो दिन के खत्म होने के दो दिन बाद ही ये लोग साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कंडीशन वो चाहेंगे कम से कम पिच ऐसी हो कि उसमें बॉल का उछाल मिले। अच्छा,
भारत और श्रीलंका के बीच हुए पहले टेस्ट मुकाबले में जहां खेल का नतीजा खराब मौसम के कारण ड्रॉ रहा था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 239 रनों से हरा दिया था।
चलते चलते एक बार फिर सुनिए विश्व समाचार दिलनवाज पाशा से।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने FBI के सामने झूठ बोलने के आरोप स्वीकार कर लिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। होंडुरास में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनावों को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दंगारोधी पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीरिया युद्ध को लेकर जिनेवा में चल रही शांति वार्ता पर सरकार के प्रतिनिधि मंडल के रवैये से संकट पैदा हो गया है। नाइजीरिया की पुलिस का कहना है कि उत्तर पूर्वी प्रांत एडमावा में हुए एक हमले में उसके 4 अधिकारी मारे गए हैं। कनाडा, रूस, चीन और अमेरिका समेत दुनिया के शीर्ष मछली पकड़ने वाले देश आर्कटिक सागर में वाणिज्यिक स्तर पर मछलियां पकड़ने पर रोक लगाने पर सहमत हुए हैं। BBC समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।